This is an ABP Life podcast.
11 मई 2022 वो दिन जब दो अदालतों के दो बड़े फैसले आए हैं और वो भी दो बहुत ही अहम मुद्दों पर। सुप्रीम कोर्ट में एक तो सेडिशन यानी कि राजद्रोह पर तो दूसरा मैरिटल रेप पर। सेडिशन वाला आया है सुप्रीम कोर्ट में और मैरिटल रेप वाला आया है दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में। चूंकि हमारे पास वक्त का तकाजा है और ज्ञान ज्यादा है तो आज हम इन दोनों में से एक मुद्दे को ही उठा पाएंगे और वो है मैरिटल रेप का मुद्दा। आखिर क्या वर्डिक्ट रहा इस पर और क्या असर पड़ने वाला है इस फैसले का मैरिटल रेप पर हो रही चर्चा पर भारत में, आज जानेंगे इस एपिसोड में। तो जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा खान और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट ज्ञानवादी पॉडकास्ट FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जी दिल्ली हाई कोर्ट की दो जज की बेंच ने एक फैसला सुनाया। मुद्दा था शादी में रेप का और फैसला आया दो तरफा यानी कि स्प्लिट वर्डिक्ट। कुछ याचिकाओं को सुनने और समझने के बाद जस्टिस राजीव शकदेर और जस्टिस सी हरिशंकर ने अलग अलग फैसले सुनाए और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत यानी कि ऑपोजिट। अब बेंच भी थी दो जजेस की और दोनों ही जजेस के अलग अलग फैसले आए हैं, इसलिए केस बना स्प्लिट वर्डिक्ट का। तो जी क्या था फैसला? संविधान में इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC की धारा 375 डिफाइन करता है, परिभाषित करता है रेप को, बलात्कार को। क्या होता है रेप? अब उस सेक्शन में है एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यानी कि एक छूट दी गई है। बेसिकली छूट ये है कि अगर पति पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनाता है या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इस परिस्थिति में पति गलत नहीं है क्योंकि वो उसकी पत्नी है, इसलिए वो ये कर सकता है। और इसी एक्सेप्शन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसी छूट को कई लोगों ने बताया था कि ये असंवैधानिक है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या एक औरत की जो राइट्स हैं, जो हक है, उनको छीनता है, उसको ना करने की एजेंसी उसका उल्लंघन करता है। तो इस पर ही कुछ याचिकाएं डाली गई थी। अब आइए पूरे मुद्दे को ध्यान से समझते हैं और गौर से सुनिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट चार याचिकाओं को सुन रही थी जिसमें धारा 375 के इस एक्सेप्शन यानी कि छूट को चैलेंज किया गया था कि भैया ये असंवैधानिक है। कुछ NGO और संस्थानों ने याचिकाएं डाली थी तो कुछ लोगों ने, जैसे कि एक याचिकाकर्ता थे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी कि AIDWA, जिनकी तरफ से मशहूर एडवोकेट करुणा नंदी ने ये केस लड़ा। तो वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने एक व्यक्ति की तरफ से ये याचिका दायर की थी और वो उसकी साइड से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ सब एक ही बात पे रहे थे कि ये जो छूट दी गई है, जो एक्सेप्शन दिया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस एक्सेप्शन की संवैधानिकता के ऊपर प्रश्न करती है ये याचिका। अब इसी बीच कुछ मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, कुछ संस्थान जिन्हें लगता है कि जो पुरुष है उनकी भी कहीं ना कहीं एक उनको प्रताड़ित किया जा रहा है इन लॉज के जरिए, ये जो रेप लॉज बने हैं, जो विशाखा गाइडलाइंस बनी है आपकी, तो उनके जरिए कई बार लड़कों को गलत तरीके से जेल में भेज दिया जाता है बदला निकालने के लिए या कुछ और रीजंस की वजह से। तो जी ये मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन की दलीलें भी बीच में आ गईं तो अदालत को वो भी सुननी पड़ी। वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और राजशेखर राव ने कोर्ट के लिए एमिकस क्यूरे का काम किया। अब आप पूछेंगे भैया ये एमिकस क्यूरे क्या होता है? डोंट वरी, बस ये शब्द बहुत कठिन है, इसका मतलब बहुत आसान। एमिकस क्यूरे वो वकील होते हैं जो दोनों में से किसी भी पार्टी के लिए या उसके खिलाफ नहीं काम करते हैं, वो सिर्फ अदालत को अपनी एक्सपर्टीज या अपने अनुभव या ज्ञान द्वारा किसी पर्टिकुलर मुद्दे, जैसे ये जो एक मुद्दा है मैरिटल रेप का एक पर्टिकुलर मुद्दा है, उस पर गाइड करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अपवाद यानी कि छूट पर, एक्सेप्शन पर, क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है। IPC की धारा 375 बताती है वो 7 परिस्थितियां जब आपकी मर्जी को नजरअंदाज किया जाता है, आपकी यानी कि एक औरत की मर्जी को नजरअंदाज किया जाता है, वो 7 सिचुएशंस जिसमें कंसेंट यानी कि मर्जी का उल्लंघन होता है एक आदमी द्वारा। हालांकि ये जो पूरी रेप की जो धारा है उस पर एक एक्सेप्शन है, एक छूट है जो मैं अब आपको बताऊंगी। लिखा क्या है शब्दों में कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। हिंदी में समझाती हूँ। कानून में लिखा है कि अगर आपकी पत्नी 18 साल से ऊपर है यानी कि एक वयस्क है और अगर अपनी ही वयस्क पत्नी के साथ एक पुरुष जबरन यौन संबंध या यौन कृत्य करता है तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये छूट बेसिकली पति को एक वैवाहिक अधिकार देती है, बकायदा कानूनन मंजूरी देती है कि वो अपनी पत्नी की मर्जी या रजामंदी के बगैर ही उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है और उसे रेप नहीं कहा जाएगा। आपको बता दूं कि कई स्टेट्स में इस पर्टिकुलर लॉ पर, कानून पर चर्चा चल रही है, तो इस एक्सेप्शन को गुजरात उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, गुजरात के हाई कोर्ट के सामने इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि ये एक महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी सहमति यानी कि उसकी कंसेंट को कमजोर करता है। यानी कि अगर महिला शादीशुदा है तो क्या उसे हक नहीं पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से मना करने का? ये तो आपकी स्वतंत्रता पर भी चोट है। और तो और, कर्नाटक हाई कोर्ट में तो इस छूट, इस एक्सेप्शन के बावजूद दस साहब ने एक आदमी पर मैरिटल रेप के चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है यानी कि दो तरफा फैसला आया है, उसे एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया दोनों ही साइड का वर्डिक्ट है, एक ऐसा तो है नहीं कि यूनानिमस है कि दोनों ने ही, दोनों जजेस ने एक ही चीज कही है, पर वो भी मैं आपको समझाती हूँ क्यों, क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी भी होगी। आपको बताते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। तो जी, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे देशद्रोह वाली आईपीसी धारा 124A की तर्ज पर ही इस केस में दिल्ली सरकार पहले तो रेप की धारा 375 की इस छूट पर अड़ी थी कि नहीं, ये ठीक है, एक्सेप्शन होना चाहिए, भैया पति पत्नी है। दिल्ली सरकार का कहना था कि इस छूट में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आदमियों को गलत तरीके से बिदाया जा सकता है, उन्हें जेल कराई जा सकती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हैं, आपको फांसी हो सकती है और इससे शादी जैसे बंधन को हम खराब कर देंगे। मगर अब विचित्र बात यह है कि दिल्ली सरकार ने यू टर्न लेकर कहा है कि अभी इस पर और विचार विमर्श करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है, इसमें सुधार होने की जरूरत है। अब सरकार ने ये यू टर्न क्यों लिया है ये तो वही बता सकते हैं। मगर मैं ये जो बार बार बोल रही हूँ स्प्लिट वर्डिक्ट, ये असल में होता क्या है और स्प्लिट वर्डिक्ट आता है जब, तब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो समझते हैं। तो जी, स्प्लिट वर्डिक्ट के मामले में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि दो जजेस थे, दोनों ने ही ये बोला, चार जजेस होते और दो जजेस एक बात बोलते और बाकी के दो जजेस एक बात बोलते तब भी ये होता। तो बेसिकली इवन नंबर में अगर जजेस हों और जो फैसला है वो डिवाइड हो जाता है इवन नंबर्स में, तब जाकर के जो केस है वो एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर जजेस आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए ऑड नंबर्स वाली पीठ रखते हैं, ऑड नंबर्स वाली बेंच रखते हैं जिसमें या तो तीन जज हों या पांच जज हों या सात जज हों, ताकि ऐसे स्प्लिट वर्डिक्ट से बचा जा सके, समय भी बर्बाद ना हो। अब ये केस या तो हाईकोर्ट की बड़ी बेंच यानी कि शायद तीन जजेस वाली बेंच के पास जाएगा या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्रमाण पत्र दे दिया है, ये सोचकर कि केस में कानूनों को बदलने की बात हो रही है। तो जी, बुधवार यानी कि कल के स्प्लिट वर्डिक्ट से क्या हमें आगे का कुछ पता लगता है कि आगे क्या हो सकता है? तो भले ही फैसला दो तरफा आया हो मगर जस्टिस शकदेर के फैसले ने उस चर्चा को आगे बढ़ाया है जो कई सालों से औरतों के हक की लड़ाई का एक अहम मुद्दा बनी हुई थी, एक अहम वाद विवाद डिबेट का एक पॉइंट बनी हुई थी। अभी पहले मैंने आपको कर्नाटक उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई का उदाहरण दिया था कि कैसे दस साहब ने धारा 375 में उस छूट होने के बावजूद एक आदमी पर मैरिटल रेप के आरोप को तवज्जो दी है और उस पर ये चार्ज लगा दिया है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर रोक लगाने की बजाय बोल दिया कि नहीं, यू कैन परसू दिस। तो हमें तो पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाया है, स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, तो शायद वो इस धारा में तब्दीली लाने की बातों को सुनेंगे जरूर, या फिर मतलब एक ओपन कॉन्वर्जेशन हो सकती है, ओपन ईयर्स रखेगी सुप्रीम कोर्ट। तो खैर, कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है इन सबसे, मगर दोनों पक्षों की बातें सुनना और समझना जरूरी है। अभी तो बटा हुआ फैसला आया है, कुछ दिन इंतजार करें, आई थिंक प्रोबेबली 3-4 डेज। जब पूरा फैसला आएगा, जब एक बड़ी बेंच पे ट्रांसफर होगा केस या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होगा केस, उसके बाद जो फैसला आएगा तब हम आपकी बात हमारे एक गेस्ट एक्सपर्ट लॉयर से कराएंगे, जो दोनों ही पक्षों की बात को निष्पक्षता के साथ समझेंगे और हमें बताएंगे। आखिरी फैसला आने पर चर्चा करेंगे कि अब वहां से बात कितने दूर तलक जाएगी इस मुद्दे पर, और क्या क्या और असर पड़ेगा भारत में औरतों की हक की लड़ाई पर। फिलहाल मैं चलती हूँ, दोबारा लौटूंगी अगले FII में। पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने। अपना ख्याल रखें, और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।